राम जी जैसे जंगल में सभी प्राणियों से हाथी बड़ा पाया जाता है, कीड़ी मकोड़े तो क्या, और बड़े बड़े प्राणियों से, घोड़ों से, ऊंटों से भी हाथी बड़ा प्राणी पाया जाता है। लेकिन उसके हाथी का बड़प्पन तब तक है जब तक सुमेरु के आगे वो खड़ा नहीं हुआ। ऐसे ही दुनियादारी के बड़प्पन, धन की, चक्रवर्ती राज्य की, इंद्रपद की बड़प्पन तब तक है जब तक आत्म परमात्मा के साक्षात्कार के बड़प्पन के आगे वो अपने को नहीं लाया है। तो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार सभी बड़प्पनों की पराकाष्ठा है। इस आत्मा परमात्मा को पाने का अवसर मनुष्य जन्म। इस आत्मा परमात्मा के अनुभव को, आत्मा परमात्मा के सुख को न पाया तो इंद्र पद पाने वाला भी अपने को आत्मज्ञानी के आगे नन्हा और कंगाल समझता है। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाकर, पाए बिना इंद्र आदि देवता भी अपने को कंगाल मानते हैं, उस आत्म पद को पाकर योगी अहंकार नहीं करता कितनी ऊंची उपलब्धि है। पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूत्वा उन्मत्तः, उस ब्रह्म परमात्मा का रस पीकर योगी मस्त रहता है। इंद्रोमपि रंकवत भाष्यत अन्यस्य का वार्ता, इंद्र का वैभव भी कंगालित जैसा लगता है उस आत्म सुख के आगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा योगी सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते, ऐसा योगी जिसने मुझ आत्मा परमात्मा के साथ एकत्व कर लिया, वो सर्वत्र सब प्रकार का व्यवहार करते हुए मुझी में व्यवहार करता है। कबीर जी ने कहा उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उठते बैठते लेते देते फिर हम उस अपने आत्मा के ठिकाने में ही रहते। जैसे आप किसी के यहां गए और आपकी कीमती अंगूठी या घड़ियाल स्नान करते कहीं बाथरूम में रह गई, अब आप जिसके घर ठहरे थे वहां आपकी कीमती चीज रह गई और आपको बाजार में किस जरूरी मिलना है, जिन किन्हीं कामों में आप लगे फिर भी जब भी मौका मिला बार बार वो कीमती चीज याद आती, मेरी रिंग थी हीरे की अथवा मेरी घड़ियाल थी हीरों वाली थी, ऐसा था कब जाऊं कब पाऊं कब करूं। तो आप सबसे मिलते हुए भी अंदर से उस कीमती चीज से बार बार मिले हुए, अब तुम्हारे हीरों की घड़ी 5-25 लाख की, तुम्हारे हीरों की रिंग अंगूठी 5-50 लाख की हो सकती है, लेकिन सारे ब्रह्मांडों को चलाने वाला सच्चिदानंद परमात्मा किसी नश्वर चीज की तुलना तो क्या, स्वर्ग भी उसके आगे कुछ नहीं। ऐसे परमात्मा का स्वाद जिनको एक बार मिल गया उनका मन व्यवहार करते हुए भी बार बार उधर गोता मारता रहेगा, इसलिए वो व्यवहार में भी निर्लेप रहते हैं। समझो राष्ट्रपति किसी झोपड़पट्टी में आ जाते हैं और वहाँ रहते हैं और वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, फिर भी उनको अपने राष्ट्रपति पद का स्मरण और सामर्थ्य तो रहता है उसके पास। ऐसे ही संसार में लेते देते जीते भी जिसको आत्मज्ञान हो गया वो महापुरुष कैसा होता होगा उसके लिए पूरा वर्णन नहीं हो सकता। नानक जी कहते मत करो वर्णन हर बे अंत है, जिन पाया तिन छुपाया, जिन्होंने उस आत्मा परमात्मा के खजाने को पाया उन्होंने छुपाया, लेकिन वो ऐसा खजाना है कि कितना भी छुपाओ तो छुपता नहीं है। जिन पाया तिन छुपाया, छुपत नहीं कछु छुपे छुपाया, वो औदार्य का गुण, परहित का गुण और उनके अंतरात्मा की शांति के, उनके रोमकूप से, उनके नेत्रों से, उनके वाणी से, उनको छूकर जाने वाली हवाओं से, इस पवित्र उपलब्धि का प्रसाद निखरता रहता है। रमण महर्षि के पास पॉल बेंटन पहुंचा, सौ सौ प्रश्नों के चिट्ठी लेकर। जब रमण महर्षि को देखता है, भारत के साधु ऋषि मुनियों के दर्शन करते करते जगत गुरु शंकराचार्य के पास गए कि भारत में तो सब चमत्कार दिखाने वाले तो कुछ मिले, लेकिन कोई भारत में ऐसा महापुरुष अभी नहीं क्या? तो जगत गुरु शंकराचार्य पद पर बैठे हुए उस समय के महापुरुष ने कहा कि जाओ तुम रमण महर्षि के दर्शन करने। उस समय गाड़ी मोटरों की सुविधा नहीं थी, पॉल बेंटन बैलगाड़ी में बैठ कर गया, थका मांदा, लेकिन रमण महर्षि के पास जमुना धो के बैठा। कुछ प्रश्न पूछने को तो देखते ही देखते जो शांति मिल रही थी, मुरारजी देसाई कहते थे कि मैं कलेक्टर से लेकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा, लेकिन रमण महर्षि के चरणों में मैं बैठकर जो शांति पाया, ऐसी शांति और जगह मैंने नहीं दी। तो ये महापुरुष के हाजिरी से जो शांति मिलती या सुख मिलता है, सारी घर की सुविधाएं, ऑफिस की सुविधाएं, नाम बढ़ाई, मैं कमिश्नर हूं, मैं डायरेक्टर जनरल हूं, सब भूल के यहां बैठे सेवा करते। या और भी कई लोग, तो ये बाहर के पद ये संयोगजन्य सुख है, इंद्रियगत सुख है, क्षणिक है, जिम्मेदारी और नश्वरता से भरे। वो आत्मसुख शाश्वतता से भरा है और इसको संभालने की जिम्मेदारी नहीं रहती। परमात्मा को कौन संभालने की जिम्मेदारी लेगा? वो तो संभला संभला है। नश्वर को संभालते संभालते थक जाओ, फिर भी नश्वर संभलता नहीं, और शाश्वत को कितना भी संभाले बिना रखो, फिर भी शाश्वत मिटता नहीं। तो तुम्हारे अंदर जो शाश्वत अंश है उसको तुम जान लो, पालो। तो एक नश्वर अंश, दूसरा शाश्वत अंश। नश्वर अंश है माया, बदलने वाला, और शाश्वत अंश है आत्मा, परमात्मा, ना बदलने वाला। बचपन तुम्हारा बदल गया, लेकिन बचपन को जानने वाले तुम नहीं बदले। किशोर अवस्था बदल गई, किशोर अवस्था की बचपन की तुम्हारी नन्ही सी नाक थी, प्यारी प्यारी आंखें थी, छोटे छोटे हाथ थे, नन्नी नन्नी उंगलियां थी। अभी वो नहीं है, लेकिन उसको जानने वाला अभी है। तो जो अभी जानने वाला है वो है शाश्वत, और जो नहीं है वो है नश्वर। ऐसे ये शरीर भी एक दिन नहीं है, ऐसा होगा, जल जाएगा, मर जाएगा, फिर भी जो है वो है शाश्वत। तो तीन शरीर होते हैं, पांच उसके कोष होते हैं। तो जो उनको कोषों को भी शरीर मानते, अन्नमय कोष, उसको अन्नमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, पांच शरीर भी बोलते हैं, पांच कोष भी बोलते हैं। ऐसे ये तीन शरीर दूसरे ढंग से, एक ये स्थूल शरीर जो आपको हमको दिखता है, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर जो दूसरे को नहीं दिखता लेकिन उसी के आधार से ये चलता है। पांच कर्म इंद्री, पांच ज्ञान इंद्री, पांच प्राण, मन और बुद्धि, ये सत्रह तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। उसी में विचार होता है, मन बुद्धि में ही निर्णय होता है, तब तुम जो कुछ करते हो। अमेरिका से इधर आए तो पहले सूक्ष्म शरीर में निर्णय हुआ, तब स्थूल शरीर अमेरिका से, यूरोप से, अथवा हिंदुस्तान से, किसी जगह से आपका यहां पहुंचा। तो तीसरा होता है कारण शरीर। तो जागृत में जीव स्थूल शरीर में सूक्ष्म संकल्प के अनुसार काम करता है, चेष्टा करता है, और गहरी नींद में ये जीव कारण शरीर में सो जाता है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये है माया, और इनमें जिसकी सत्ता चेतना है वो है आत्मा। जैसे मिठाइयां अनेक, शक्कर एक, बेसन की मिठाइयां, मावे की मिठाइयां, मैदे की मिठाइयां, आटा और मेथी डाल के लड्डू बनाए, फलाने लड्डू फलाने, ये सूखड़ी फलाना, वो वैरायटियां अनेक लेकिन मिठास एक। ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण, अन्नमय प्राणमय मनोमय, ये सब अनेक लेकिन उसमें सत्ता चेतना परमात्मा आत्मा की एक। तो जब मर जाते तो स्थूल शरीर यहां रह जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है, तो उसके जैसे कर्म करते तो कर्म तो बाहर रह जाते लेकिन करने के संस्कार अपने अंदर होते। तो अच्छा किया तो अच्छा स्वभाव बनता है, तो अच्छे लोकों में जाने की योग्यता मिलती है। बुरा करते तो बुरा स्वभाव बनता है और उस समय बुरी वासना ही उठती है। जैसे कोई मांस खाने की आदत पड़ी और मर गया, तभी भी मांस की खाने की रुचि वाली आदत के प्रभाव से वो मांसाहारी प्राणी के शरीर में उसका जन्म होगा। अब क्रोध का स्वभाव तो सर्प आदि उसका सूक्ष्म शरीर आएगा और सर्प आदि और भी जो क्रोधी योनियां उसमें जाएगा। अगर देवता सात्विक स्वभाव है, पुण्य दान है और स्वर्ग चाहता है तो फिर उसको उस प्रकार की यात्रा होगी। लेकिन स्वर्ग में भी ये स्वर्ग का सुख है उसको जानने वाला चैतन्य तो वहां भी है साथ में। नरक में जाएगा तो नरक के दुख का अनुभव तो चेतन को होगा। तो सूक्ष्म शरीर जहां जहां जाएगा वहां वहां, जैसे आप आईना जहां ले जाते हो वहां आकाश देखेगा, ऐसे जहां भी सूक्ष्म शरीर होता है वहां परमात्मा की सत्ता होती। परमात्मा दो हाथ पैर वाले अथवा पैगंबर हैं ऐसी इतना ही नहीं, परमात्मा वह है जैसे आपका ये आकाश है ना, तीन आकाश होते हैं, इसको बोलते हैं भूताकाश। आपके सूक्ष्म शरीर चित्त में जो इसका पता चलाता है वो है चित्ताकाश। तो चित्ताकाश और भूताकाश की बातें बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता है जानता है उसको बोलते चिदाकाश। तो आपके शरीर में कितना भी परिवर्तन हो गया, आपके मन में परिवर्तन हो गया, आपके बुद्धि में परिवर्तन हो गया, आपकी आंखों में, नाक में, उंगलियों में परिवर्तन हो गया, उसको आप जान रहे हैं। तो आपका आत्मा है चिदाकाश और आपके अंदर में है चित्ताकाश और बाहर है भूताकाश। तो वो भूताकाश से चित्ताकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है इधर। और उस सुबह के समय जैसे ये भूताकाश साफ होता है, सुबह के समय लोग उठे उसके पहले के समय लोगों के आंदोलन, वाइब्रेशन, चिंतन की तरंगे कम होती है। तो उस समय ऋषि मुनियों की तरंगों को आप जब करेंगे तो सजाती है, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाते हैं नियम के अनुसार। तो सुबह आप सूरज उगने के पहले के समय ध्यान भजन करते तो मंत्र जागृत होता है, उस समय देवता जागृत होता है और ये सुषुम्ना का द्वार खुला रहने का अवसर होता है। तो इससे आपकी प्रार्थना उस समय जितनी आसानी से फलती है और जितनी आप आर्त भाव से प्रार्थना करते हो, सच्चे हृदय से प्रार्थना करते, प्रार्थना के शब्द और आप एक हो जाते, वो प्रार्थना फलती है। क्योंकि एक होने से आप चित्ताकाश से, चिदाकाश स्वरूप ईश्वर से, गुरु से आप आसानी से मिल जाते। जिसको कोई बड़ा काम करना या बड़ा तकलीफ मिटाना तो सुबह के समय ये थोड़ा प्राणायाम आदि करके फिर प्रार्थना करे और शांत हो जाए। ऐसे एक एक मिनट शांत हो जाए, दिन में 9 बार प्रार्थना करें, 3-4 बार तो सुषुम्ना का द्वार कुदरती ही खुलता है। सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि को चार बार, और बीच में भी कभी कभी खुलता है, और आर्त भाव से की हुई प्रार्थना वातावरण में चमत्कार सर्जित कर देती। राजगोपालाचार्य 1956 में मद्रास के चीफ मिनिस्टर थे। मद्रास के इलाके में अकाल पड़ा, पानी की तंगी थी, रेडस्टोन लैक सूख गया था, पानी सप्लाई की जगह सूख गई, जहां तहां से टैंकर लाला कर भी थक गए थे। आखिर राजगोपालाचार्य ने प्रजा को अपील की कि फलाने दिन बीच पर समुद्र किनारे सुबह चार से शाम को चार तक प्रार्थना करेंगे। सब अपना अपना भजन कीर्तन सुमरण जो भी करते प्रार्थना करेंगे। राजगोपालाचार्य ने आर्त भाव से सच्चे हृदय से ऊंचे मंच पर, लेकिन पवित्र श्रद्धा से भरकर लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना की। प्रार्थना तो वहां पूरी हो गई। लोग बोले अभी तो मौसम भी चला गया, बरसात होना पॉसिबल भी नहीं है, रात को बादल दिखे, थके मांदे थे लोग सो गए, लेकिन रात को 10 बजे बड़ी बड़ी बरसात की बूंदे ऐसी बरसी कि सुबह देखते देखते रेडस्टोन लेक ओवरफ्लो। फिर भी इतना बरसा कि 1956 में मद्रास में गवर्नमेंट को सड़कों पे नावें चलानी पड़ी। एक साथ कई दिलों का संकट था कि पानी पड़े पानी पड़े पानी पड़े, तो जहां भी संभावना होगी इस धरती पर तो कहीं कुछ मौसम बरसात गिरे। देख लो मेघ गरज रहे, बड़ी बड़ी बूंदे पड़ती, बड़ी धमाधम चला। बरसे बस। नारायण हरि। ऐसा नहीं सोचना कि मैंने ये कुछ चमत्कार किया, वो केसीयू वाले ने बजाया है। ऐसा नहीं समझ लेना बापू ऐसा करते तो मैं गरजते हैं, ये चक्कर में मत आना। नारायण हरि। हे राम जी, फूल पत्ते और टहनियां तोड़ने में परिश्रम है, अपने आत्मा परमात्मा को जानने में क्या परिश्रम। फूल पत्ते टहनियां तो बाहर है, वो लाओ और मस लो, यहाँ तो न लाना है न मसलना है, जो हाजरा हजूर मौजूद है, जो तुमको कभी छोड़ नहीं सकता, जिसको तुम कभी नहीं छोड़ सकते, उसका नाम है ईश्वर। मनुष्य की मांग का नाम है ईश्वर। आप सदा रहना चाहते, सदा सुख चाहते और ज्ञान चाहते, वो सदा रहे ज्ञान और सुख उसी आत्मा में, और उसी का ले लेके फिर इधर उधर सुख चाहते, ये मिल जाए तो अच्छा है। तो ये अच्छाई तुमने दी तभी तुमको चिकन अच्छा लगा, नहीं तो चिकन में अच्छाई नहीं है। शराब मिल जाए तो शराब ही अपनी अच्छाई वहां डाल, जुआरी अपनी अच्छाई डालता है, आप अपनी अच्छाई वहां छिटक के फिर वहां गुलामी करते हो। लोग कश्मीर जाते घूमने के लिए, हाँ बहुत बढ़िया है, मैं भी चेक करने को गया सब जगह, 1.5-2 दिन रहे, कहाँ कहाँ सुख है, 7 स्प्रिंग है, फलाना है, रेड लेक है, फूलों की घाटी है, धमाधम चेक किया, क्या यहाँ सुख रहता है। सब लोग इधर आते कश्मीर में, कपल शादी करके सुख यहाँ खोजते, तो सुख तू कैसे रहता है, मेरा जरा विनोदी स्वभाव। तो शिकारो नाव सजी धजी उसमें भी बैठ के देखा कि कितना सुख इसमें रहता है। डल लेक में नाव का भी सैर किया तो नाविक बोलता है कि बाबा मेरा हाथ देखो, मेरे भाग्य में कहीं लिखा है एक बंबई जाने का, मैं क्या धत तेरे की, बंबई वाले यहाँ सुख खोजने को झक मार रहे बेचारे, और तू बोलता है मेरे भाग्य में बंबई जाना कब लिखा है। हाँ बाजी, मेरे मुकद्दर में बंबई देखने का, बंबई जाने का है कुछ। तो ये हमारे मन की बेवकूफी है, जहां है वहां सुख नहीं कहीं और जगह सुख, जहां है वहां गहराई नहीं और जगह और ये धोखा देता है। लेकिन भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते, वो सब जगह रहते हुए भी अपने सुख स्वरूप मुझ में रहता है। सद्गुण जो भी है उसे सत्य स्वरूप ईश्वर का है, और दुर्गुण जो है वो अपनी वासना होता है, अपने ईगो का होता है। तो एक होता है शैतान और एक होता है खुदा। तो जो सत्य है वो खुदा है और जो वासना और ईगो है वो शैतान है। इसीलिए धर्म जगत में मंदिर में भगवान आपने ही बिठाया, मस्जिद में पूजा का स्थान आप ही ने बनाया, चर्च में, और फिर आप ही वहां प्रणाम करते ताकि ईगो लेस करने का थोड़ा अवसर मिले। आपके और ईश्वर के बीच में नश्वर अहंकार है और वो सुख चाहता है। उसको अगर शाश्वत सुख का स्वाद चखाने वाला सत्संग और साधन मिल जाए तो तुम्हारे मन में बड़ा भारी प्लस पॉइंट है, सद्गुण है कि एक बार चस्का लग जाए तो मन चलता है। एक बार ध्यान का, जप का और भगवान के महत्व का चस्का बैठ जा बुद्धि में, बस काम बन जाए। अभी मन में बैठा है, फिर उधर जाते हैं तो मन बिगड़ जाता है। अभी ये कमाना भी जरूरी है, इतना तो झूठ बोलना चलेगा, इतना तो ये करना जरूरी, इतना नहीं, ऐसा करके फिर अदृढ़ हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं ये शाम त्वंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत हो गया है, जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पुण्य जोर मारते, ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता, द्वंद और मोह से मुक्त होकर भजन्ते माम दृढ़ व्रता, वे मुझे दृढ़ता से भजते, पक्का इरादा, दहल जाए आसमान दिल कभी दहलता नहीं, ऐसे लोग पार हो जाते, पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय। सुन करे मारे सासू ने जरा त्यां गम्मे छे, मारी माँ ने त्यां गम्मे छे, मारी मिसिस ने त्यां गम्मे छे, मारा मिस्टर ने त्यां गम्मे छे, अरे बद्धा ने गम्मे त्यां गमतू, साचू गम्मानू तो तमारा आत्माना आनंद छे, ईश्वर छे, बीजू बधु जूठू गम्मानू छे। कोई ने जूठू गमतू एनी पाछळ आपे खपी मरवानी जरूर नथी। बोले इसको ये अच्छा लगता है, इसको ये अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है, झूठी बात है। अच्छा लगने की वैरायटियां अनेक है, लेकिन सब सुख चाहते, अपना भला चाहते, और सुख परमात्मा में है, भला परमात्मा में है। मेरी माँ को अच्छा लगता था कि मेरा बेटा मेरे सामने ही रहे, तो मेरी माँ की ममता को अगर मैं महत्व देकर पड़ा रहता तो न माँ का भला होता न बेटे का भला होता। मैं चला गया और जो वास्तव में अच्छा था तो फिर मां का भी कल्याण हुआ। माता का पिता का बात मानना चाहिए, लेकिन ईश्वर के रास्ते जाने में अगर मदद नहीं करते, रोकते हैं, तो मां की बात को भी हमने किनारे रख के वो यात्रा कर ली। भगवान के रास्ते से मैं भी रोकूं तो आप मेरी बात छोड़कर आप ईश्वर के रास्ते चलना चालू रखिए। ईश्वर के रास्ता से अगर पिता हटाता हो, मां हटाती हो, पत्नी हटाती हो, रिश्तेदार हटाते हो, गुरु भी ईश्वर से हटाते हो, तो गुरु की बात का त्याग करने की शास्त्र सम्मति दे देते। कितना ऊंचा शास्त्र, कितना ऊंचा हित से भरा है भारतीय संस्कृति। दूसरे लोग तो बोलते बस लिखा है, इसने कह दिया करो, वो अपना अपना मजहब होता है, लेकिन सनातन धर्म किसी व्यक्ति का, किसी पीर पैगंबर का बनाया नहीं है। लोग बोलते सब धर्म समान है, सब धर्म, अरे सब धर्मों के प्रति हमें सद्भाव आदर प्रेम रखना चाहिए, लेकिन सब धर्मों की अपनी अपनी विशेषता है, मजहबों की अपनी अपनी है। रिलीजियस हो कि अपनी अपनी, लेकिन सनातन धर्म का सत्य तो सब सर्वोपरि चीज है मानव मात्र के लिए। सनातन धर्म जैसे इस्लाम मुसलमान के लिए है, ईसाई ईसाइयों के लिए है, ऐसे ही पूजा पाठ अमुक हिंदुओं के लिए। लेकिन हिंदू जैसे हिंदुत्व को पाते हैं, मुसलमान जैसे मुसलमानियत को पाते हैं, ईसाई जैसे ईसाईत को पाते, उस आत्म परमात्मा का ज्ञान देने वाला तो सनातन धर्म वैदिक धर्म एक ही है। सभी आदमी सुख चाहते, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, चाहे कोई भी हो, नहीं चाहते क्या? कुछ भी करके सुख चाहते, और सुख सदा रहे ऐसा चाहते। और सहज में मिलता रहे ऐसा चाहते। तो जो सुख स्वरूप है, सदा है और सहज में मिलता है, वो तुम्हारा आत्मा परमात्मा ही है। उसको पाने की रीत की व्यवस्था का नाम है हिंदू धर्म। उसमें बड़ी ऊंची सरल रीत बताई गई। कोई हम पर कृपा करेगा फिर हमको बिस्त मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में से तो गिरना पड़ेगा। सदा कहां सुख रहा? अभी नहीं रहा। चलो जो अभी रहता है उसी में जाओ, ओम करते हुए शांति पाओ। नजर श्वास पर, नाक पर नजर, श्वासोश्वास की गिनती। श्वासोश्वास की गिनती, श्वास अंदर जाए ओम, श्वास बाहर आए एक। ओम मनावा आत्मा परमात्मा, उसमें हम शांत। एक भी श्वास बिना गिनती के ना जाए। 108 की गिनती अगर रोज करते हो, धीरे धीरे दोष मिटेंगे, स्वभाव विजय में बल बढ़ेगा। विद्यार्थी भी करेंगे तो पढ़ने में इसमें तो मदद मिलेगी, संसारी संसार में सकुशल जी सकेंगे और ईश्वर प्राप्ति का रास्ता खुलेगा। गुरु गीता का पाठ, युवन पुरुष युवा सुरक्षा पुस्तक का पाठ और ये साधना। नाक के आगे से पर नजर, श्वास अंदर जाता है, अपनी तरफ से खींचना नहीं है, अंदर जाता है, बाहर आया एक, ओ बाहर आया दो, ठीक। ये श्वासोश्वास की साधना हल्का आदमी नहीं कर सकता है, नीच व्यक्ति नहीं कर सकता है। कबीर ने कहा, माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। जो नीची मति के, नीचे कर्म वाले, निगुरे लोग हैं, वो ऐसी ऊंची साधना नहीं कर सकते। शांति ओम माधुर्य ओम ओम स्वभाव विजय you.